विधान के अनुसार उस देखे सुने और माने हुए में कोई बाधा आ जाती है, अर्थात जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती और उनके पूरी न होने से जो दुख होता है, तब स्वभाव से ही इंद्रिय जन्य ज्ञान में संदेह होता है। किंतु वो संदेह यदि सर्वांश में हो जाए तब तो बड़ी ही सुगमता पूर्वक प्राणी अपना विकास कर लेता है। पर होता क्या है कि वो संदेह सर्वांश में नहीं होता। जैसे मैं अपने जीवन को सामने रखकर जब सोचता हूं तो ऐसा मालूम होता है कि जब अस्मा आंखें खराब हो गई और हरने के संकल्प में बाधा हो गई, तब ये भास नहीं हुआ कि भाई आज अगर देखने की शक्ति नाश हो सकती है तो बोलने सुनने की भी शक्ति नाश हो सकती है, ऐसा भास नहीं हुआ। तो हुआ क्या कि अगर 1/5 कार्य समाप्त हुआ है तभी 4/5 से काम चल सकता है। ये जो दशा है, ये दशा दुख को अधिक काल तक जीवित रखने वाली दशा है। उच्च कोटि के जो महापुरुष होते हैं वो किसी भी एक बात से सारी बातों को जान लेते हैं। जैसे कहावत है ना कि हांडी में एक चावल देखा जाता है और उससे ये पता चल जाता है कि सारा चावल चल गया। तो ऐसी वस्तु स्थिति जिन व्यक्तियों की होती है वे तो बड़ी ही सुगमता पूर्वक इंद्रिय जन्य ज्ञान के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होकर समस्त कामनाओं से रहित हो जाते हैं। कामनाएं है क्या? इंद्रिय जन्य ज्ञान के प्रभाव से जिनकी उत्पत्ति होती है उन्हीं को कामना कहते हैं। उन कामनाओं में से सभी कामनाएं आज तक किसी की पूरी नहीं हुई, किंतु कुछ कामनाएं अवश्य पूरी हो जाती हैं। तो जो कुछ कामनाएं जो पूरी हो जाती हैं, यह है इंद्रियजन्य ज्ञान अथवा इस ज्ञान में जो विश्वास है वो विश्वास समस्त कामनाओं की निवृत्ति के लिए प्रेरणा नहीं दे पाता। अथवा यो कहो कि हम सभी कामनाओं को नष्ट करना चाहते हैं, ये बात वर्तमान जीवन से संबंधित नहीं हो पाती। तो होता क्या है कि प्राय लोग ये कहा भी करते हैं, अरे भाई देखो अभी तो मौज में है, भविष्य में देखा जाएगा क्या होगा क्या होगा। बात तो ठीक है, अभी तो मौज है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस समय हमारा संकल्प पूरा होता है उस समय सभी को मौज मालूम होती है, ये बात ठीक है। पर देखा जाएगा भविष्य में क्या होगा, ये प्रश्न सुख के प्रलोभन से हमें बांध देता है, बांध। और हम जो वास्तव में होने वाली बात है उसको जानना ही नहीं चाहते, और यदि जानने में आ भी जाए तो उसका प्रभाव नहीं होने देते, और यदि किसी कारण प्रभाव हो भी जाए तो फिर ऐसी बातें सोचने लगते हैं, अरे भाई मरना तो है ही, तो बिना खाए क्यों मरे, बिना अमुक काम किए क्यों मरे, मरना तो है ही। ऐसी बातें सोच सोच कर हम उस ज्ञान का प्रभाव, जो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान को खा सकता है मिटा सकता है, उस ज्ञान के प्रभाव को नहीं होने देते। नहीं होता ऐसी बात नहीं, होता तो है। देखिए जिस काल में इंद्रिय ज्ञान है उसी काल में बुद्धि का ज्ञान भी है, और सच पूछिए तो बुद्धि से अतीत का ज्ञान भी है। ज्ञान के तीनों स्तर ज्यों के त्यों सदैव सुरक्षित हैं, इंद्रिय ज्ञान भी, बुद्धि ज्ञान भी और बुद्धि से अतीत का ज्ञान भी। जैसे कोई दिन में दीपक भी जला दे, बल्ब भी जला दे और सूरज का प्रकाश भी हो, तो इस उदाहरण में तो ये बात मालूम होती है कि सूर्य का प्रकाश बल्ब और दीपक के प्रकाश को अपने में विलीन कर लेता है और अपने को ही प्रकाशित करता है, किंतु ज्ञान के संबंध में ऐसा नहीं हो पाता। ज्ञान के संबंध में तो ऐसा होता है कि इंद्रिय ज्ञान भी है, बुद्धि ज्ञान भी है, बुद्धि से अतीत का ज्ञान भी है, परंतु अधिकतर हमारे जीवन पर जो प्रभाव रहता है वो इंद्रिय ज्ञान का रहता है, और वो इंद्रिय ज्ञान बुद्धि ज्ञान की अपेक्षा अल्प है और बुद्धि ज्ञान बुद्धि से अतीत के ज्ञान की अपेक्षा अल्प है। तो अल्प ज्ञान का प्रभाव हो और विशेष ज्ञान का प्रभाव न हो, इसी का नाम है अविवेक। और अविवेक कुछ नहीं है, विशेष ज्ञान का प्रभाव न होना और अल्प ज्ञान का प्रभाव रहना, ये जो अविवेक है ये अविवेक साधन का निर्माण नहीं होने देता। और जब साधन का निर्माण नहीं होता तब साधन में अस्वाभाविकता भी मालूम होती है, कठिनाई भी मालूम होती है और वो पूरा हो भी नहीं पाता। ऐसी दशा में हम लोग ये सोचने लगते हैं अरे जो होता है तो ठीक है, इतना हो गया इतना ही ठीक है, ये क्या कम है कि हम थोड़ी देर सत्संग में बैठकर अपना एक घंटा अच्छा कट गया। बात तो ठीक है, लेकिन सोचना तो ये है भाई कि आखिर ये मानव जीवन जब सिद्धि के लिए मिला है तो फिर ये बात कब तक हम टालते रहेंगे। सिद्धि प्राप्त करने वाली बात हम कब तक टालते रहेंगे। तो हमारा तो ऐसा विश्वास है भाई और अनुभव भी है कि जब तक हम अपनी सिद्धि को वर्तमान की वस्तु नहीं मानेंगे तब तक भाई सिद्धि होने की संभावना है नहीं। और जिस समय हम सिद्धि को वर्तमान की वस्तु स्वीकार करेंगे उस समय हमारी पूरी शक्ति लग जाएगी। अब आप कहेंगे कि आप जिस सिद्धि की बात कहते हैं वो सिद्धि क्या है, उस सिद्धि का वास्तविक रूप क्या है, ये तो जब प्राप्त होगी तभी आप जान सकेंगे। लेकिन संकेत भाषा में ये कहा जा सकता है कि बुद्धि से अतीत का जो ज्ञान है अथवा बुद्धि का जो ज्ञान है उसका प्रभाव हो जाए जीवन में और इंद्रिय ज्ञान का उपयोग हो जाए। बुद्धि के ज्ञान का तो हो प्रभाव और इंद्रिय के ज्ञान का हो उपयोग। आप कहिए इसको जरा उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। बुद्धि ज्ञान ने हम सबको ये बताया कि संयोग में ही वियोग है, संयोग में ही वियोग है, ये बात बुद्धि के ज्ञान से स्पष्ट होती है। लेकिन प्रभाव इसका नहीं होता। प्रभाव किसका होता है? अजी भाई अभी तो हम लोग इकट्ठे हैं ही हैं, चाहे पिता पुत्र के रूप में हो, चाहे पति पत्नी के रूप में हो, चाहे दो मित्रों के रूप में हो, चाहे दो बंधुओं के रूप में हो, बोले अभी तो हम हैं, हमारा भाई है और हम हैं, हमारा बेटा है और हम हैं, और हमारी पत्नी है और हम हैं, और हमारा पति है और हम हैं, बोले अभी तो हम हैं। ऐसा कभी नहीं सोचते कि आज जिस प्यार से हम बैठे आपसे बात कर रहे हैं एक दिन विवश होकर हम सबको अलग हो जाना पड़ेगा, अलग हो जाना पड़ेगा और इसमें कोई अपना बस नहीं चलेगा। इस बात का जीवन में बताओ प्रभाव होता है क्या? यदि इस बात का प्रभाव हो जाए तो हमारी आपकी वस्तु स्थिति क्या हो जाएगी कि भाई देखो थोड़ी देर का साथ है इसलिए एक दूसरे के साथ जो करना है वो करो, क्योंकि हमेशा का साथ तो है नहीं। जैसे आए हुए मेहमान को कष्ट सहकर भी अच्छा भोजन दे देते हैं, स्थान दे देते हैं आए हुए मेहमान को, उसी प्रकार हमारे प्रत्येक व्यवहार में ये प्रभाव आ जाए कि भाई थोड़े देर का साथ है आखिर तो अलग होना ही है, اس لیے تھوڑی دیر کے لیے ہم کیوں ایسی بات کریں جو کرنے کی نہیں ہے, جو کرنے کی نہیں ہے. تو باہی جیون میں ایک کرانتی آ جائے, پرکاش مل جائے. پرنتو ایسا نہیں ہو پاتا. کیوں نہیں ہو پاتا؟ کہ بدھی کا گیان تو ہے کنتو اس کا پربھاؤ سویکار نہیں کرتے. آپ کہیں گے یہ پربھاؤ کو سویکار کرنے والا کون سا دیوتا ہے؟ میں آپ کو سچ کہتا ہوں, وہ کوئی دیوتا ہو لیکن وہ تم ہی ہو. تم ہی ایک ایسے دیوتا ہو جو اندری گیان کے پربھاؤ کو بھی سویکار کرتے ہو, بدھی گیان کے پربھاؤ کو بھی سویکار کر سکتے ہو, اور بدھی سے اتیت کے گیان سے بھی ابھن ہو سکتے ہو. تو وہ جو تم ہو کہ جس کے اوپر انیک پرکار کے پربھاؤ انکت ہیں, اس کو اس کی وستو استھتی کیا ہے؟ اس کی وستو استھتی مجھے تو ایسی معلوم ہوتی ہے کہ بھائی اگر سب پربھاؤ مٹا دیے جائیں تب اس کا گیان ہوگا. اندری گیان کا پربھاؤ جب مٹے, بدھی گیان کا پربھاؤ جب ہو کر کے اپنا پھل دے کر سماپت ہو جائے, تب آپ پتا چلا سکتے ہیں کہ یہ پربھاؤ کس نے سویکار کیا تھا. کنتو ہم لوگ اندری گیان کے ہوتے ہوئے, بدھی گیان کے ہوتے ہوئے, بدھی گیان سے اتیت کے گیان کو جانتے ہوئے چاہتے ہیں کہ ہم اس دیوتا کا پتا لگا لیں کہ جس دیوتا نے ان سب کو سویکار کیا ہے. اسی کا نام کسی نے جیو رکھ دیا, اسی کا نام, اسی کا نام کسی نے ویکتو رکھ دیا, اسی کا نام کسی نے کچھ رکھا اور کسی نے کچھ رکھا. لیکن واسطو میں وہ کیا ہے اس کو جان سکتے ہیں؟ اس کو جان سکتے ہیں؟ پھر تو اس کا ورنن نہیں کر سکتے. اور اگر ورنن کر بھی سکتے ہیں تو کیول اس انت میں کر سکتے ہیں کہ بھائی جس میں کامنے ہے اسی میں جگیاسا بھی ہے. تو کامنا کے رہتے ہوئے تو جگیاسا پوری نہیں ہوتی. آپ کہیں گے تو کامنا تو کبھی ناش ہوگی نہیں, ایسی بات نہیں ہے. کامنا تو کہتے ہی اس کو ہے کہ جس میں پرورتی ہو اور جس کی نورتی ہو اور پورتی نہ ہو. کامنا کی جو واسطو میں پریباسا ہے وہ مجھے تو ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نورتی بھی ہوتی ہے, وہ اس کے انوروپ پرورتی بھی ہوتی ہے. تو نورتی اور پرورتی یہ جو اوستھائیں ہیں, یہ جو اوستھائیں ہیں, نورتی سے کیا ملتا ہے کہ بھائی شانتی ملتی ہے, اور پرورتی سے کیا ملتا ہے کہ ستیہ کا ہراس ہوتا ہے. ستیہ کا ہراس, تو ستیہ کا ہراس کامنا کے انوروپ پرورتی میں, اور ستیہ کا سنچے کامنا کی نورتی میں. اس میں ایک کا نام بھوگ رکھ لو تو دوسرے کا نام یوگ رکھ لو. تو یوگ اور بھوگ جس کے پرکاش سے پرکاشت ہے وہ کون سا دیوتا ہے؟ وہ کون سا دیوتا ہے کہ جس کے پرکاش سے یوگ بھی پرکاشت ہے اور بھوگ بھی پرکاشت ہے؟ اور وہ کون سا دیوتا ہے جو اپنے کو بھوگی اور یوگی کہتا ہے؟ اور بھوگ اور یوگ کیا ہے؟ تین پرشن بنے بھائی, تین پرشن. ایک تو یہ پرشن کہ یوگ اور بھوگ کا پرکاشک کون ہے, اور یوگی اور بھوگی کون ہے, اور یوگ اور بھوگ کیا ہے. اس سمبندھ میں یہ ہم اور آپ وچار کریں تو یوگ اور بھوگ کا جو پرکاشک ہے اس کو میں نہیں کہہ سکتے, اس کو ہے کہہ سکتے ہیں. اور جس کو ہے کہہ سکتے ہیں اس کا کبھی ناش نہیں ہو سکتا, اور جس کا ناش نہیں ہو سکتا وہ سبھی کا سب کچھ رہتا ہے, اور سب کچھ ہونے پر بھی سبھی سے اتیت بھی ہے. تو جو سبھی سے اتیت ہے, سبھی کا سب کچھ ہے, وہی پرکاشک ہے. کس کا؟ یوگ اور بھوگ کا. تو یوگ کیا ہے کہ کامنا کی نورتی, اور بھوگ کیا ہے کہ کامنا کے انوروپ پرورتی. پرورتی تو پرورتی کا نام ہوا بھوگ, نورتی کا نام ہوا یوگ. اور وہ یوگی اور بھوگی کون ہے؟ اس کو آپ کہتے ہیں میں, اس کو آپ کہتے ہیں میں. تو میں بھوگی بھی ہو اور یوگی بھی ہو. ذرا دھیان تو دیجیے, ذرا دھیان تو دیجیے کہ بھوگ اور یوگ میں تو پرسپر ورودھ ہے. परस्पर विरोध है, वो अगर प्रवृत्ति है तो वो निवृत्ति है, वो अगर शक्ति का विराज करता है तो उसे शक्ति का संचय होता है, भोग यदि पराधीनता की ओर ले जाता है तो योग स्वाधीनता की ओर ले जाता है, भोग यदि जड़ता में आबद्ध करता है तो योग चिन्मयता की ओर ले जाता है। बिल्कुल विरोध है, लेकिन क्या योगी और भोगी दो हैं? तो ध्यान दीजिए कैसी अलौकिक बात, कैसी विचित्र बात, भोगी और योगी एक और भोग और योग में विरोध। तो भोग और योग में विरोध, किंतु जो अपने को भोगी कहता है वही अपने को योगी कहता है। तो इससे पता चला कि जिसको आप मैं कहते हैं उसका कोई ऐसा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं मालूम होता जो पर के बिना प्रकाशित हो जाए। जैसे भोग के बिना भोगी प्रकाशित हो जाए, योग के बिना योगी प्रकाशित हो जाए, जिज्ञासा के बिना जिज्ञासु प्रकाशित हो जाए, प्रेम के बिना प्रेमी प्रकाशित हो जाए, ऐसा भाषित नहीं होता, ऐसा अनुभव भी नहीं होता। तो अब तात्पर्य ये निकला कि भाई हमें भोग का आश्रय लेकर अपने अस्तित्व को रखना है, अथवा योग का आश्रय लेकर अपने अस्तित्व को रखना है, अथवा जिज्ञासा का आश्रय लेकर अपने अस्तित्व को रखना है, अथवा प्रेम का आश्रय लेकर अपने को रखना है। इन चारों में से किसी एक का आश्रय लेना ही पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए कि जब हम भोग का आश्रय देते हैं तब सुख भोगते हैं रुचि से, लेकिन दुख भोगना पड़ता है व्यवस्था से ही। याद दीजिए, सुख को व्यवस्था से नहीं भोगते, लेकिन दुख बोले दिवस होकर भोगना पड़ता है। तो जब दिवस होकर दुख को भोगते भोगते हम इतने दुखी हो जाते हैं कि भाई अब तो हमसे दुख नहीं भोगा जाता, भाई अगर तुमसे दुख नहीं भोगा जाता तो सुख का भोगना बंद करो। बोले ये अपने बस की बात नहीं है। तो भैया अगर तुम्हारे ये बस की बात नहीं है कि सुख का भोगना बंद कर सको, तो ये भी तुम्हारे बस की बात नहीं है कि दुख के भोग से बच सको। ये किसका सत्य नहीं है? कौन भाई ऐसा है जिसका ये सत्य नहीं है? कौन बहन ऐसी है जिनका ये सत्य नहीं है कि सुख के भोगते हुए दुख को भोगना ही पड़ता है? अब दुख को हम चाहते नहीं, तो भाई ये कौन सा देवता है कि हम तो दुख को चाहते नहीं और मजबूर होकर हमारे पास दुख भेज देते हैं? वो कौन सा देवता है? बोले आज तक उसका पता नहीं चला कि वो कौन सा देवता है। तो लोग तो ये कहने लगे कि भाई ऐसा विधान ही है, ऐसा विधान ही है, ये तो होनहार ही है, ये तो होगा ही। तो भाई जो विधान होता है, ध्यान दीजिए, जो विधान होता है वो उसका कोई आधार होना चाहिए, उसका कोई प्रकाशक होना चाहिए। अब ये तो आपकी मर्जी की बात है कि आपको विधान तो मानना ही पड़ता है। अब आप ये नहीं मानते, ये नहीं मानते कि कोई इसका आधार है अथवा ये किसी का विधान है। इसके न मानने से जिसका वो विधान है उसका कोई मूल्य घटता नहीं, और इसके मानने से कि भाई ये किसी का विधान है उसका कोई मूल्य बढ़ता नहीं। परंतु ध्यान तो इस बात पर देना है कि जब आपको विधान मानना ही पड़ता है, जब आपको विधान मानना ही पड़ता है, तो वो किसी का विधान है इसके मानने में आपको आपत्ति क्या है? आप कहें हमें आपत्ति हो या न हो पर हम नहीं स्वीकार करते, बड़ी सुंदर बात, लेकिन विधान को बोले तो दिवस में वो तो स्वीकार करना ही पड़ता है। तो बहुत ठीक बात, बहुत ठीक बात। किसी ने कहा कि हम प्रकाश को तो मानते हैं किंतु सूर्य को नहीं मानते, और बोले उष्णता को तो मानते हैं किंतु सूर्य को नहीं मानते। तो इसमें अपना कोई हानि नहीं मालूम होती, सूर्य को भी कोई अनादर नहीं मालूम होता, लेकिन एक बात तो बताओ, विधान का, विधान के अनुसार सुख दुख का भोगता किसको मानते हो? विधान के अनुसार सुख दुख का भोगता किसको मानते हो? तो आपको कहना ही पड़ेगा अपने को मानते हैं। अच्छा भाई, सुख से अलग, सुख का भोगता कभी तुमने देखा अपने को? दुख से अलग दुख का भोगता कभी अनुभव किया? बोले सो तो नहीं किया। तो एक और तो आपकी इतनी उदारता है कि जिसको आज तक नहीं देखा उसका आप अस्तित्व मानते हैं, और दूसरी ओर आपकी ये न्याय प्रियता है कि प्रकाश प्रत्यक्ष है बोले सूर्य को नहीं मानते, प्रकाश प्रत्यक्ष है सूर्य को नहीं मानते। तो हमारे मानव सेवा संघ की नीति में किसी को मनाने का लेस मात्र भी नियम नहीं है, अपनी बात दूसरे पर लादने का लेस मात्र भी आग्रह नहीं है। तो भाई आप मानिए अथवा मत मानिए, लेकिन आप जो स्वयं सुख दुख के भोगते हैं, हम ये जानना चाहते थे कि दुख से अलग करके आपका अस्तित्व क्या है, सुख से अलग करके आपका अस्तित्व क्या है, अवस्था से अलग करके आपका अस्तित्व क्या है, परिस्थिति से अलग करके आपका अस्तित्व क्या है, वस्तु से अलग करके आपका अस्तित्व क्या है। इस दृष्टि से कृपा सिंधु आप विचार करें। जब इस दृष्टि से आप विचार करेंगे तो सुख से अलग होकर आप अपने को दुखी नहीं कह सकते, सुख से अलग होकर आप अपने को सुखी नहीं कह सकते, वस्तु से अलग होकर आप अपने को व्यक्ति नहीं कह सकते, अवस्था से अलग होकर आप अपने को परछिन्न नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। कहने का मेरा तात्पर्य है कि सुख दुख वस्तु अवस्था परिस्थिति आदि जो आपको इंद्रिय ज्ञान से प्रकाशित प्रतीत होते, यानी जिनकी प्रतीति इंद्रिय ज्ञान के आधार पर है, वही वस्तु वही अवस्थाएं वही परिस्थितियां वही सुख दुख बुद्धि ज्ञान की दृष्टि से परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। कौन कौन परिवर्तनशील है? कि सुख दुख वस्तु अवस्था परिस्थिति। तो जब सुख दुख वस्तु अवस्था परिस्थिति परिवर्तनशील है, उस परिवर्तनशीलता का ज्ञान जिस ज्ञान से होता है उस ज्ञान का नाम है बुद्धि का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान। किंतु जब आप फुल और नहीं, जब आप इंद्रिय ज्ञान के प्रभाव से उत्पन्न हुई कामना का सुख भोगना चाहते हैं, तब बुद्धि का ज्ञान मन के अधीन हो जाता है, और फिर मन बुद्धि इंद्रियों के अधीन हो जाता है, और फिर इंद्रियां विषयों के अधीन हो जाती हैं। तात्पर्य क्या निकला? कि इंद्रियजन्य ज्ञान के प्रभाव से उत्पन्न हुई कामना की पूर्ति आपको असीम से ससीम की ओर, अव्यक्त से व्यक्त की ओर, स्वाधीनता से पराधीनता की ओर, चिन्मयता से जड़ता की ओर ले जाती है। अंत में परिणाम क्या होता है? अंत में परिणाम क्या होता है? कि दुख का प्रभाव ही है जब वो मूर्तिमान होकर व्यक्ति के रूप में प्रकट होता है, अथवा ऐसे पुरुष जब अवतरित होते हैं कि जिनके विवेक में और जीवन में एकता है, जिनके विवेक में और जीवन में एकता है, साधारण व्यक्ति देवमान के कारण उन व्यक्तियों को भी गुरु मान लेते हैं। लेकिन संघ की नीति में गुरु एक तत्व है, और वो गुरु तत्व आपके पास विवेक के रूप में आपको प्राप्त है। ये जो गुरु और शिष्य की जो स्वाधीनता है, जिसमें कि पराधीनता का की गंध भी नहीं है, तो आज हम उस विवेक के अधीन नहीं रहते। बस हमसे क्या भूल होती है? हम सुखी भी रहते हैं, दुखी भी रहते हैं, भोगी भी मानते हैं, योगी भी मानते हैं, जिज्ञासु भी मानते हैं, लेकिन विवेक के अधीन होकर नहीं मानते। यदि आज हम और आप अपने अपने विवेक के अधीन हो जाएं, तो हमारी बुद्धि जब विवेकवित हो जाएगी, जब विवेकवित हो जाएगी तब मन के अधीन नहीं रहेगी। और ये नियम है कि जब तक बुद्धि की स्वीकृति मन को नहीं मिलती, तब तक मन संकल्प पूर्ति में प्रवृत्त नहीं होता, और जब तक मन संकल्प पूर्ति में कार्य नहीं करता तब तक इंद्रियों के अधीन नहीं होता, और जब तक इंद्रियों के अधीन नहीं होता तब तक मन पराधीन नहीं होता। सीधी सादी बात,
اس لیے بھائی ہم سب کو وویک کے آدھین ہونا ہے, اتنا یوں کہو کہ ہم سب کو وویکی ہونا ہے. یہ آپ کی دیکھیے اہم جو ہے, دھیان دیجیے, اہم جو ہے کوئی اس کا ایسا سوتنتر استتو آپ نے دیکھا نہیں, دکھا سکا نہیں کوئی آج تک. وشواس تو بہت دلایا, کسی نے جیو کہہ کے وشواس دلایا ہمارا برا مت ماننا, اور کسی نے برم کہہ کے وشواس دلایا, اور کسی نے ویکتی کہہ کے وشواس دلایا, اور کسی نے کچھ نہیں کہہ کے وشواس دلایا. کچھ نہیں کچھ نہیں, تو چاہے کچھ نہیں کہو, چاہے جیو کہو, چاہے ویکتی کہو, چاہے برم کہو, تو اہم کے ساتھ ملی ہوئی وستو اہم کو پشت کرتی ہے اور اپنے کو اس کے آدھین بنا دیتی ہے. اس درشٹی سے جب ہم اور آپ نسپکش بھاؤ سے وچار کریں گے تو بھائی اس اہم کا سوروپ نکلے گا پراشرے. پراشرے ایک ہم نے کہانی سنی تھی کہ بہت سے لوگ کئی پرکار کا ساز بج رہا تھا, ساز انیک پرکار کے ساتھ, جیسے تبلہ ہے, سرنگی ہے, ستار ہے, مردنگ ہے, ایسے کئی ایک ساتھ بج رہے تھے. ایک سجن جو تھے ان کے پاس ایک ٹیڑھی مڑی لکڑی تھی, تو جب سب ساتھ بجے تب وہ لوگ بجانے والے جب مست ہو تو وہ بھی مست ہو کر اپنی لکڑی پہ خوب ہاتھ چلائے تیزی سے. تو کسی نے پوچھا کہ بھائی اس باجے کا کیا نام ہے, کہ وہ مل باجا ہے, کہ مل باجا, مل باجا ہے. بولے اس کا سور اور تال کیا ہے, بولے اس کا سور اور تال تبھی نکلتا ہے جب سب بازے بچتے ہیں, جب سب بازے نہیں بچتے ہیں تو اس کا کوئی سور تال نہیں ہے. سچ پوچھئے تو ہم کو یہ کہانی ایسی معلوم ہوئی کہ مانو کسی نے آم کے سمبندھ میں لکھی ہے, سکھ کے ساتھ ملا دو تو میں سکھی, دکھ کے ساتھ ملا دو تو میں دکھی, بھوک کے ساتھ ملا دو تو میں بھوگی, یوگ کے ساتھ ملا دو تو یوگی, سندے کے ساتھ ملا دو تو جگیاسو, بھکت کے ساتھ بھگوان کے ساتھ ملا دو تو بھکت, پریم کے ساتھ ملا دو تو پریمی, اور سب کو نکال دو تو بولے کچھ نہیں, اور کچھ نہیں کے ساتھ ملا دو تو کچھ نہیں. یہی نہ ہوا, بدھ نے کہہ دیا کچھ نہیں, آم جیسی کوئی وستو نہیں, شنکر نے کہہ دیا برہم, جینیوں نے کہہ دیا جیو, بھوتک وادیوں نے کہہ دیا ویکتی. میں ادھار دیا نہیں کرتا ہوں اپنے ویاکرن میں کبھی, لیکن نہ جانے آج کیوں مسئلے آ گئے. تو آپ سوچیے, جان گمبھیرتا سوچیے کہ جس کو آپ نے اور آپ لوگوں نے کیا, میں تو امک کا پتی ہوں, کوئی کہتی ہے میں امک کی پتنی ہوں, کوئی کہتا ہے میں امک کا بیٹا ہوں. ارے لالا جس بیری سے تم پیدا ہوئے وہ تین بار بدل گیا, تب بھی میں دوں دھیان دو. تو بھائی بھائی اندری جن جان کا یہ پربھاؤ ہے, سنا ہوا تو اندریوں کے دوارا نہ سنا جاتا ہے, اندریوں کے دوارا نہ دیکھا جاتا ہے. تو اندری جن جان کے پربھاؤ میں آبدھ پرانی اپنے کو نہیں جانتا. سیدھی بات, اندری جن جان میں آبدھ پرانی اپنے کو نہیں جانتا, اور جو اپنے کو نہیں جانتا سچ پوچھے وہ کسی کو نہیں جانتا. تو کرتا کیا ہے کہ مانتا ہے, مانتا ہے اپنے کو بھی, مانتا ہے اوروں کو بھی, مانتا ہے تو سنسار کو بھی مان لیا اور اپنے کو بھی مان لیا, لیکن نہ اپنے کو جانا نہ جگت کو جانا. کہنے کا میرا تاتپریہ یہ تھا کہ اس اندری جن گیان کا پربھاؤ اپیوگ کے لیے ہونا چاہیے, گیان کے لیے نہیں. اندری جان کے آدھار پر آپ جو اپنے کو گیانی مان بیٹھتے ہیں, دیکھیے نا سائنس سے پوچھیے تو کرم ہے کرم, اب آج کل انواد کر دیا وگیان, اور وگیان کہتے کہ اس کو وشیش گیان, یعنی جس میں گیان کی گندگی نہیں ہے اس کا نام وگیان. دھیان دیجیے, جس میں گیان کی گندگی نہیں ہے اس کا نام وگیان. آپ کہیں گے گیان کی گند کیوں نہیں ہے, وہ تو میں نے آپ سے نویدن کیا نا, سینکڑوں میل کا دیکھ نہیں سکے, سینکڑوں میل گھنٹوں میں چل بھی سکے, بہت دور کی بات بھی سن سکے, لاکھوں آدمی کو مار بھی سکے, یہ تو اندری گیان کا ویاپار ہے سرکار, یہ تو اندری گیان کا ویاپار ہے. ارے بھائی 3/4 × 75/100 کرنے سے وزن بڑھتا ہے کیا, وزن تو کچھ نہیں بڑھتا. تو وشیش گیان تو ہوا نہیں, کوئی ادھورا گیان رہا, الپ گیان رہا, اس کا اپیوگ بڑھ گیا, اس کا اپیوگ بڑھ گیا. تو اپیوگ بڑھ جانے سے گیان نہیں بڑھ جاتا, उपयोग घट जाने से ज्ञान नहीं घट जाता, उपयोग घट जाने से ज्ञान नहीं घट जाता। इसलिए भाई जिसे आप साइंस कहते हैं, जिसका अनुवाद आप लोग हिंदी में विज्ञान करते हैं, उसमें ज्ञान की गंध भी नहीं है। क्यों? ज्ञान कहते किसे अल्लाह सोचो तो सही, जिससे निस्संदेहता प्राप्त हो। तो क्या आज विज्ञान ने विज्ञान से निस्संदेहता प्राप्त है? किसी को निस्संदेहता प्राप्त नहीं है। तो फिर विज्ञान है क्या? बल है, बल। थोड़ा ध्यान दीजिए, विज्ञान है बल, और बल जो होता है वो हमेशा चेतना शून्य होता है। बल में चेतना नहीं होती। यदि बल में चेतना होती तो बल के द्वारा आप निर्बल को खा नहीं सकते थे। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो वास्तव में ज्ञान है आज उस पर हमारी दृष्टि नहीं आती। हाँ, ये तो दूसरी बात है कि अगर वो ये कहती कि किताब पढ़ने से फिलॉसफी नहीं आती है, किसी के सिखाने से फिलॉसफी नहीं आती है, तो मैं उनकी बात को सुनहरी बात मानता। लेकिन उन्होंने कहा फिलॉसफी क्या, फिलॉसफी क्या, तो मैं कहता हूँ और है क्या? अगर फिलॉसफी नहीं है तो है क्या? कुछ नहीं है। सच मानिए, जहाँ दर्शन नहीं है वहाँ जीवन नहीं है महाराज, वहाँ मृत्यु है, वहाँ अभाव है, वहाँ जड़ता है, वहाँ पराधीनता है, वहाँ कुछ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है भाई कि इंद्रिय ज्ञान का उपयोग करना है, उपयोग करना है। बुद्धि ज्ञान के द्वारा इंद्रिय ज्ञान पर विजयी होना है। लेकिन कब कब विजयी होना है? जब बुद्धि विवेक वित हो तब। तो जो आज अपने को दुखी मानता है, सुखी मानता है, भोगी मानता है, योगी मानता है, यदि वो विवेकी हो जाए विवेक वित होकर, जैसे भोग वित होकर भोगी हुआ, योग वित होकर योगी हुआ, सुख वित होकर सुखी हुआ, दुख वित होकर दुखी हुआ, ऐसे ही जो उसे नित्य प्राप्त है, सुतः प्राप्त है, उस सुतः प्राप्त नित्य प्राप्त विवेक द्वारा यदि वो विवेक वित होकर विवेकी हो जाए, तो विवेकी किसे कहते हैं भैया? जहाँ अविवेक की गंध न रहे, और जहाँ अविवेक की गंध नहीं रहती वहाँ क्रियात्मक रूप में अकर्तव्य नहीं रहता। अविवेक का नाश होते ही अकर्तव्य का नाश होता है, और अकर्तव्य के नाश में ही कर्तव्य परायणता है, और कर्तव्य परायणता में ही विद्यमान राग की निवृत्ति है। ये कर्तव्य परायणता का महत्व क्यों है? अकर्तव्य का विरोध क्यों है? क्योंकि कर्तव्य परायण हुए बिना, देखिए जरा ध्यान दीजिए, सही अर्थ में पति हुए बिना पत्नी के राग से नहीं छूट सकता, सही अर्थ में पिता हुए बिना संतान के राग से नहीं छूट सकता, सही अर्थ में मित्र हुए बिना मित्र के राग से नहीं छूट सकता, सही अर्थ में व्यक्ति हुए बिना समाज के राग से नहीं छूट सकता। और मुझे तो इसमें भी कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि सही अर्थ में से जीव हुए बिना ईश्वर के राग से नहीं छूट सकता, लेकिन अनुराग से युक्त हो सकता है। ध्यान दीजिए, राग से छूटने पर ही अनुराग से युक्त होता है, और अनुराग चाहे पिता पुत्र के बीच में हो, चाहे पत्नी के बीच में हो, चाहे मित्रों के बीच में हो, चाहे व्यक्ति और समाज के बीच में हो, चाहे जीव और ईश्वर के बीच में हो, अनुराग अनुराग रस रूप है, रस रूप है, और अनुराग का रस स्वाधीन रस है, अनुराग का रस नित्य रस है, किंतु राग का रस अनित्य रस है और पराधीनता में आबद्ध करने वाला है। तो कर्तव्य ने हमें क्या बताया? कर्तव्य ने हमें ये बताया कि राग को रहे, राग को अनुराग में बदल दिया। थोड़ा ध्यान तो दीजिए, अगर कोई पिता के लिए पुत्र है अथवा पुत्र के लिए पिता है, और न तो पिता होकर पुत्र से सुख की आशा करता है और न पुत्र होकर पिता से सुख की आशा करता है, तो सुख की आशा से रहित किया हुआ जो प्रेम है, की हुई जो सेवा है, वो सेवा कितनी सुंदर होगी। जरा ध्यान तो दीजिए, आज यदि हम सुख की आशा से रहित अपने संबंधियों से प्रीत करने लग जाए, उनकी सेवा करने लग जाए, तो क्या हमारा आपका व्यक्तिगत जीवन सुंदर नहीं होगा? इतना सुंदर होगा महाराज, इतना सुंदर होगा कि जिसके लिए राष्ट्र की भी अपेक्षा नहीं होगी और सच मानिए तो मजहब की भी अपेक्षा नहीं होगी। किंतु हमसे भूल क्या होती है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को विवेकी हुए बिना, और कोई कर नहीं, विवेकी हुए बिना अविवेकी होकर उस व्यक्तिगत जीवन को राग में आबद्ध कर लेते हैं। हमारे एक मित्र कहते हैं आप हमको अभी राग रहित कर दीजिए। अरे राग रहित भैया विवेकी होता है, और किसी दूसरे के करने से कोई हुआ नहीं, हो सकता नहीं, कभी होगा नहीं। हाँ ये दूसरी बात है कि विवेकियों के संपर्क में विवेक का महत्व बढ़ता है, और जब विवेक का महत्व बढ़ता है तो विवेक प्राप्त तो है ही है। आज हुआ क्या? अविवेक का महत्व बढ़ने से हम अविवेकी हो गए, और विवेक का महत्व बढ़ने से हम सब विवेकी हो सकते हैं और अभी हो सकते हैं, और जब विवेकी हो सकते हैं तो कर्तव्यनिष्ठ हो ही सकते हैं, और जब कर्तव्यनिष्ठ हो सकते हैं तब राग रहित हो ही जाएंगे, और जब राग रहित होंगे तब अनुराग युक्त होने में क्या देर है? जहाँ राग नहीं है वहाँ अनुराग है, जहाँ राग नहीं है वहाँ योग है। क्यों? राग से ही भोग होता है, तो योग अनुराग बोध इन सबकी प्राप्ति में कोई भी भाई कोई भी बहन पराधीन नहीं है। और यही सब पूछिए, भोग वर्तमान की वस्तु नहीं है सरकार। आपको अगर चाय पीनी होगी 8 बजे तो वो 8 बजना वर्तमान की वस्तु नहीं है, वो भविष्य की वस्तु है, उसमें आप स्वाधीन नहीं है, उसमें आप पराधीन है। क्यों? भोगने की शक्ति रहे तब न भोगेंगे, भोग की वस्तु रहे तब न भोगेंगे, लेकिन योग में पराधीनता नहीं है, योग वर्तमान की वस्तु है। तो जो वर्तमान की वस्तु है जिसमें पराधीनता नहीं है उससे आज हम निराश है निराश। भला हम साधारण पतित प्राणी क्या योगी हो सकते हैं? तो मैं आपसे पूछता हूँ, जब हम साधारण प्राणी योगी नहीं हो सकते तो क्या सातवें आसमान के व्यक्ति योगी हो सकते हैं? ध्यान तो दीजिए। तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि आज हम इंद्रियजन्य ज्ञान के प्रभाव में इतने प्रभावित हो गए हैं कि कर्म का नाम विज्ञान रख लिया, तो सोचिए बल का नाम ज्ञान रख लिया। अरे भाई कर्म से आपको अरुचि होती हो, घबराते हो, तो बल का नाम ज्ञान रख लिया, और बल कभी ज्ञान नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि में आप अगर क्रियात्मक रूप देखेंगे वहां भी बल को स्वाधीन नहीं रखा। हम एक दिन सोचने लगे कि क्या कारण है कि पुलिस गोली नहीं चला सकती जब तक मैं सिर्फ हस्ताक्षर न हूँ। आपने सुना होगा कानून है ये प्रकृति का प्रथा, क्यों नहीं चला सकती? पुलिस है बल और मजिस्ट्रेट है न्यायाधीश, है न्यायाधीश हो सकता है विवेक है, और तो बल और विवेक के बीच में बल को हमेशा विवेक के अधीन रहना चाहिए। आज हमसे भूल क्या हुई कि बल के अधीन विवेक हो गया। उदाहरण लीजिए, एक छोटा सा प्रश्न था कि जो वेजिटेबल बनाया जाता है बोले इसमें कोई रंग डाल दिया जाए, तो धन के अधीन कौन हो गया? वो साइंस बेटा जो रंग डाल सकता है, नहीं डाल सका। और धन के अधीन कौन हो गया? वो पावर जिसको इलेक्शन के लिए रुपया लेना है। आप सोचिए अंग्रेजी राज्य में जो हम लोग ये कहते थे कि जब हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तब इस प्रकार की वस्तुएं देश में नहीं मिलेंगी, आज क्या दशा हो गई? आप कितना रुपया दीजिए शुद्ध घी ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो सारे संसार को ईमानदार बनाने का दम बढ़ता है आज का राज्य, लेकिन स्वयं इलेक्शन के अधीन होकर, धन के अधीन होकर मिल ओनर का गुलाम हो गया। और मिल ओनर का गुलाम और कौन हुआ? वो साइंस बेटा जो कहता है मैं ज्ञाता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, और वो पढ़ा लिखा राजनीतिज्ञ मैनेजर बन गया, महाराज मैनेजर है, कोई केमिस्ट बन गया, कोई मैनेजर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया। दशा क्या हुई कि करोड़ों आदमियों को निखल रूपी निखल धातु खिलाकर आंतों की बीमारी पैदा कर दी महाराज। किसके द्वारा हुआ? ये विवेक के विरोध से न हुआ, ये बल के अधीन होने से न हुआ। तो जब मनुष्य बल के अधीन होता है और विवेक वित्त नहीं रहता है, तब उसके जीवन में कर्तव्य नहीं रहता। और जब जीवन में कर्तव्य नहीं रहता, तो कोई कानून कर्तव्यनिष्ठ नहीं बना सका, कोई मजहब हमें कर्तव्यनिष्ठ नहीं बना सका। मुझे मालूम है एक बड़े पूंजीपति जो बड़े अच्छे आदमी मानने जाते हैं, उनसे किसी ने फोन होकर कहा कि वजह से फैक्ट्री खोलो, उन्हें इनकार कर दिया। लेकिन आज उन्हीं की कई वजह से फैक्ट्री थी। मतलब क्या, किसों से इनकार किया? जब जीवन में धर्म था, जब जीवन में धर्म था तब इनकार किया। और जब धर्म नहीं रहा, कर्तव्य नहीं रहा, पैसा आ गया, तो जिस जीवन में पैसा निवास करता है, मैं आपसे पूछता हूँ, उस जीवन में कर्तव्य आएगा ही कैसे? ध्यान दीजिए, जिस जीवन में पद निवास करता है, उस जीवन में कर्तव्य कैसे आएगा? जिस जीवन में सुख की दाता निवास करती है, उस जीवन में कर्तव्य कैसे आएगा? जिस जीवन में दुख का भय निवास करता है, उसमें कर्तव्य कैसे आएगा? कदाप नहीं आएगा। इसलिए भाई, अगर आज हमें और आपको सचमुच मानव होना है, सचमुच सिद्धि प्राप्त करना है, तो हरेक भाई को, हरेक बहन को विवेकी होना होगा। और जब आप विवेकी हो जाएंगे, तो वस्तुओं की दासता से मुक्त हो जाएंगे। जब वस्तुओं की दासता से मुक्त हो जाएंगे, तब देह अभिमान से भी मुक्त हो जाएंगे। और जब देह अभिमान से मुक्त हो जाएंगे, तो पद लोलुपता से भी मुक्त हो जाएंगे। तात्पर्य क्या निकलेगा? तात्पर्य ये निकलेगा कि संसार की कोई भी शक्ति आपको अपने अधीन नहीं बना सकती। और जिसको संसार अपने अधीन नहीं बना सकता, मजबूर होकर संसार उसके अधीन हो जाता है। तो जिसके अधीन संसार है, वो है मानव जीवन। और जो संसार के अधीन है, उसका नाम आप रखना, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि आज हम सबको विवेकी होकर कर्तव्यनिष्ठ होना है, कर्तव्यनिष्ठ होकर राग रहित होना है, राग रहित होकर अनुराग प्राप्त करना है, और अनुराग प्राप्त करके अपने जीवन को अपने लिए, जगत के लिए, प्रभु के लिए उपयोगी सिद्ध करना है। और जिसका जीवन सभी के लिए उपयोगी है, उसी जीवन का नाम मानव जीवन है। और भाई मेरे, किसी का नाम सिद्धि है।